ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। संसद के जारी शीतकालीन सत्र में गतिरोध खत्म करने के प्रयास के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज दोपहर बाद संसद भवन में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान श्री बिरला ने सदन की कार्रवाई निर्बाध चलाए देने का अनुरोध करते हुए सभी सदस्यों से अनुरोध किया। बैठक में नेताओं ने लोकसभा की कार्रवाई सुनिश्चित करने पर अपनी सहमति जताई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद के कामकाज में रुकावट डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है। उन्होंने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर लोकतंत्र में विश्वास न रखने का आरोप लगाया। श्री सिंह ने कहा कि संसद की कार्रवाई में इस प्रकार का व्यवधान डालना जनता के पैसे की बर्बादी है। उधर कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने कहा है कि सदन तब तक नहीं चल पाएगी जब तक सदस्यों को सवाल पूछने नहीं दिए जाएंगे। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण रुकावट आई। दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी विशेष कामकाज के कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने एक प्रमुख व्यापारिक समूह के खिलाफ कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा किया। कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। महाराष्ट्र में विधायक दल का नेता चुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पार्टी का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये प्रेक्षक भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव की निगरानी करेंगे। महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को होगा। महाराष्ट्र में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने शानदार जीत दर्ज की थी। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा है कि आगामी 10 वर्षों में भारतीय नौसेना में 96 जहाज और पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष हर एक महीने एक जहाज शामिल किया जाएगा। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने आज नई दिल्ली में बताया कि 62 जहाज और एक पनडुब्बी निर्माणाधीन है। उन्होंने बताया कि बुधवार को उड़ीसा के पुरी में नौसेना दिवस मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इस वर्ष अप्रैल में सितंबर के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संबंधन विभाग के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, दूरसंचार और ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अर्थव्यवस्था में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ साथ अधिक निवेश और रोजगार सृजन होता है। आयुष ने पिछले 10 वर्षों में वृद्धि दर्ज की है और 2023 में इसका बाजार $43 अरब से अधिक हो गया है। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने बताया कि सरकार आयुष क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नाइक ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब दुनिया भर में अधिकतम देशों में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि निर्यात क्षेत्र में भी वर्ष 2014 में लगभग $1 अरब से बढ़कर 2023 में $2 अरब से अधिक का हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में 68% की कमी आई है। पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि वर्ष 2022 में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने के 53,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। इन राज्यों में इस साल 12,530 घटनाएं सामने आई हैं। इस वर्ष पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना भी दुगना कर दिया गया है। मौसम विभाग ने केरल में तेज वर्षा और भूस्खलन के कारण 5 जिलों मल्लापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कुन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी किया है। 4 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र हाई अलर्ट पर हैं क्योंकि इन क्षेत्रों में भूस्खलन और बाढ़ की आशंका है। लोगों को जल निकायों और तटीय क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। मछुआरों को मछली पकड़ने वालों और समुद्र तट की सैर करने की गतिविधियों पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। शारजाह में अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता में भारत ने जापान को 340 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक जापान ने 39वें ओवर में 5 विकेट पर 95 रन बना लिए हैं। इससे पहले मोहम्मद अम्मान के 122 रन की बदौलत भारत ने 6 विकेट पर 339 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।